नाना प्रकार के व्रत स्नान और तर्पण की विधि तथा अन्नादि पर्वतों के दान की प्रशंसा में राजा धर्ममूर्ति की कथा। पुलत्स्य जी कहते हैं, हे राजन, ज्येष्ठ पुष्कर में गौ, मध्यम पुष्कर में भूमि और कनिष्ठ पुष्कर में स्वर्ण दान देना चाहिए। यही वहाँ के लिए दक्षिणा है। प्रथम पुष्कर के देवता श्री ब्रह्मा जी है, दूसरे के भगवान श्री विष्णु तथा तीसरे के श्री रुद्र है। इस प्रकार तीनों देवता वहाँ पृथक पृथक स्थित है। अब मैं सब व्रतों में उत्तम महापातक नाशन नाम के व्रत का वर्णन करता हूँ। यह भगवान शंकर के द्वारा बताया गया व्रत है। रात्रि को अन्न तैयार करके कुटुंब वाले ब्राह्मण को बुलाएं और उसे भोजन कराकर एक गौ, स्वर्णमय चक्र से युक्त त्रिशूल तथा दो वस्त्र, धोती और चादर दान में दें। जो मनुष्य इस प्रकार का पुण्य करता है वह शिवलोक में जाकर आनंद का अनुभव करता है। वही महापातक नाशन व्रत है, जो एक दिन एक भक्त व्रती रहकर एक ही अन्न का भोजन कर दूसरे दिन तिलमय धेनु और वृषभ का दान करता है, वह भगवान शंकर के पद को प्राप्त करता है। यह पाप और शोकों का नाश करने वाला रुद्र व्रत माना गया है। जो एक वर्ष तक एक दिन का अंतर देकर रात्रि में भोजन लेता है तथा वर्ष पूरा होने पर नील कमल कमल स्वर्णमय कमल और चीनी से भरा हुआ पात्र एवं बैल दान करता है, वह भगवान श्री विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। वह नील व्रत कहलाता है। जो मनुष्य आषाढ़ से लेकर चार महीनों तक तेल की मालिश छोड़ देता है और भोजन की सामग्री दान करता है, वह भगवान श्री हरि के धाम में जाता है। यह मनुष्यों को प्रसन्न करने वाला होने के कारण प्रीति व्रत कहलाता गया है। जो चैत के महीने में दही, दूध, घी और गुड़ का त्याग कर देता है और गौरी की प्रसन्नता के उद्देश्य से ब्राह्मण दंपति का पूजन करके उन्हें महीन वस्त्र और रस से भरे पात्र का दान करता है, उस पर गौरी देवी प्रसन्न होती है। यह गौरी व्रत भवानी का लोक प्रदान करने वाला होता है। जो आषाढ़ आदि चातुर्मास्य में कोई भी फल नहीं खाता तथा चौमासा बीतने पर घी और गुड़ के साथ एक घड़ा एवं कार्तिक की पूर्णिमा को पुनः कुछ स्वर्ण ब्राह्मण को दान देता है, वह रुद्रलोक को प्राप्त होता है। यह शिवव्रत कहलाता है। जो मनुष्य हेमंत और शिशिर में पुष्पों का सेवन छोड़ देता है तथा अपनी शक्ति के अनुसार सोने के तीन फूल बनवाकर फाल्गुन की पूर्णिमा को भगवान श्री शिव और विष्णु की श्री विष्णु की प्रसन्नता के लिए उनका दान करता है, वह परम पद को प्राप्त करता है। यह सौम्य व्रत कहलाता है। जो फाल्गुन से आरंभ करके प्रत्येक मास की तृतीया को नमक छोड़ देता है और वर्ष पूर्ण होने पर भवानी की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण दंपति का पूजन करके उन्हें शैया और आवश्यक सामग्रियों सहित गृह दान करता है, वह एक कल्प तक गौरी लोक में निवास करता है। इसे सौभाग्य व्रत कहता है। जो द्विज एक वर्ष तक मौन भाव से संध्या करता है और वर्ष के अंत में घी का घड़ा, दो वस्त्र, धोती और चादर, तिल और घंटा ब्राह्मण को दान करता है, वह सारस्वत लोक को प्राप्त होता है, जहाँ से फिर इस संसार में लौटना नहीं पड़ता। यह रूप और विद्या प्रदान करने वाला सारस्वत नाम का व्रत है। प्रतिदिन गोबर का मंडल बनाकर उसमें अक्षतों द्वारा कमल बनाएं, उसके ऊपर भगवान श्री शिव या विष्णु की प्रतिमा रखकर उसे घी से स्नान कराएं। फिर विधिवत पूजन करें। इस प्रकार जब एक वर्ष तक बीत जाए तब सामगान करने वाले ब्राह्मण को शुद्ध सोने का बना हुआ 8 अंगुल का कमल और तिल की धेनु दान करें। ऐसा करने वाला पुरुष शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है, यह साम व्रत कहा गया है। नवमी तिथि को एक भुक्त रहकर एक ही अन्न का भोजन करके कुमारी कन्याओं को भक्तिपूर्वक भोजन कराएं तथा गौ, स्वर्ण, सिला हुआ अंगा, धोती, चद्दर और सोने के सिंहासन ब्राह्मण को दान करें। इससे वह शिवलोक में जाता है और वो जन्मों तक स्वरूपवान होता है। शत्रु उसे कभी परास्त नहीं कर पाते हैं। यह मनुष्यों को सुख देने वाला वीर व्रत नाम का व्रत है। चैत से आरंभ कर 4 महीनों तक प्रतिदिन लोगों को बिना मांगे जल पिलाए और इस व्रत की समाप्ति होने पर अन्न वस्त्र सहित जल से भरा हुआ माट, तिल से पूर्ण पात्र तथा स्वर्ण दान करें। ऐसा करने वाला पुरुष ब्रह्मलोक में सम्मानित होता है। यह उत्तम आनंद व्रत है। जो पुरुष मांस का बिल्कुल परित्याग करके व्रत का आचरण करे और उसके पूर्ति के निमित्त गौ तथा सोने का मृग दान करे, वह अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त करता है। इसका नाम अहिंसा व्रत है। एक कल्प तक इसका फल भोग कर अंत में मनुष्य राजा होता है। माघ के महीने में सूर्योदय के पहले स्नान करके द्विज दंपति का पूजन करें तथा उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति वस्त्र तथा आभूषण दान में दें। यह सूर्य व्रत है। इसका अनुष्ठान करने वाला पुरुष एक कल्प तक सूर्यलोक में निवास करता है। अषाढ़ आदि 4 महीनों में प्रतिदिन प्रातः स्नान करें और फिर कार्तिक की पूर्णिमा के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर गोक दान करें तो यह मनुष्य भगवान श्री विष्णु के धाम को प्राप्त होता है। यह विष्णु व्रत है। जो एक अयन से दूसरे अयन तक पुष्प तथा ध्रुत का सेवन छोड़ देता है और व्रत के अंत में फूलों का हार, घी और ध्रुत मिश्रित खीर ब्राह्मणों को दान करता है, वह शिवलोक में जाता है। इसका नाम शील व्रत है। जो नियत काल तक प्रतिदिन संध्या में दीप का दान करता है और घी तथा तेल का सेवन नहीं करता, फिर व्रत समाप्त होने पर ब्राह्मणों को दीपक, चक्र, शूल, सोना और धोती, चद्दर दान करता है, वह इस संसार में तेजस्वी होता है तथा अंत में रुद्रलोक को जाता है। यह दीप्ति व्रत है। जो कार्तिक मास के आरंभ में प्रत्येक मास की तृतीया को रात के समय गोमूत्र में पकाई हुई जौ की लापसी बनाकर खाता रहता है और वर्ष के समाप्त होने पर गोदान करता है, वह एक कल्प तक गौरी लोक में निवास करता है और उसके बाद इसी लोक में राजा होता है। इसका नाम रुद्रवत व्रत कहा गया है। यह सदा कल्याण करने वाला होता है। जो 4 महीनों तक चंदन लगाना छोड़ देता है और अंत में सीपी, चंदन, अक्षत और 2 वस्त्र, श्वेत वस्त्र, धोती और चद्दर ब्राह्मण को दान करता है, वह वरुण लोक में जाता है। यह दृढ़ व्रत कहलाया गया है। सोने का ब्रह्मांड बनाकर उसमें तिल की ढेरी में रखें, उसे तिल की ढेरी में रखें तथा मैं अहंकार रूपी तिल का दान करने वाला हूँ ऐसी भावना के साथ घिसे, अग्नि को तथा दक्षिणा से ब्राह्मणों को तृप्त करें। घी से अग्नि को तथा दक्षिणा से ब्राह्मणों को तृप्त करें। फिर माला, वस्त्र तथा आभूषणों सहित ब्राह्मण दंपति का पूजन करें और विश्वात्मा की तृप्ति के उद्देश्य से किसी शुभ दिन अपनी शक्ति के अनुसार 3 तोले से अधिक सोना और तिल सहित ब्रह्मांड ब्राह्मण को दान करें। ऐसा करने वाला पुरुष पुनर्जन्म रहित ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। इसका नाम ब्रह्म व्रत है। यह मनुष्य को मोक्ष देने वाला माना गया है। जो तीन दिन तक केवल दूध पीकर रहता है और अपनी शक्ति के अनुसार एक तोले से अधिक सोने का कल्प वृक्ष बनवाकर उसे एक सेर चावल के साथ ब्राह्मण को दान करता है, वह भी ब्रह्म पद की प्राप्ति करता है। यह कल्प वृक्ष व्रत है जो एक महीने तक उपवास करके ब्राह्मण को सुंदर गौ दान करता है, वह भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। इसका नाम भीम व्रत है। जो 20 तोले से अधिक सोने की पृथ्वी बनाकर दान करता है और दिन भर दूध पीकर रहता है, वह रुद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। वह धनप्रद नाम के व्रत कहलाया गया है। यह 700 कल्पों तक अपना फल देने वाला होता है। माघ अथवा चैत की तृतीया को गुड़ की गौ बनाकर दान करें। इसका नाम गुड़ व्रत कहा गया है। इसका अनुष्ठान करने वाले पुरुष को गौरी लोक में सम्मान मिलता है। अब परम आनंद प्रदान करने वाला महाव्रत का वर्णन करता हूँ। जो 15 दिन उपवास करके ब्राह्मण को 2 कपिला गायें दान में देता है, वह देवता और असुरों के से पूजित हो ब्रह्मलोक में जाता है तथा कल्प के अंत में सबका सम्राट बनता है। इसका नाम प्रभा व्रत कहलाया गया है। जो 1 वर्ष तक केवल 1 ही अन्न का भोजन करता है और भक्ष्य पदार्थों के साथ जल का घड़ा दान करता है, वह कल्प पर्यंत शिवलोक में निवास करता है। इसे प्राप्ति व्रत भी कहलाया गया है। जो प्रत्येक अष्टमी को रात्रि में 1 बार भोजन करता है और वर्ष समाप्त होने पर दूध देने वाली गाय का दान करता है, वह इंद्रलोक में जाता है। इसे सुगति व्रत कहलाया गया है। जो वर्षा आदि 4 ऋतुओं में ब्राह्मणों को ईंधन देता है और अंत में घी तथा गौ का दान करता है, वह परब्रह्म की प्राप्ति करता है और यह सब पापों को नाश करने वाला वैश्वानर व्रत कहलाया गया है। जो 1 वर्ष तक प्रतिदिन खीर बनाकर खा लेता है और व्रत समाप्त होने पर ब्राह्मण को 1 गाय और 1 बैल दान करता है, वह 1 कल्प तक लक्ष्मी लोक में निवास करता है। इसका नाम देवी व्रत कहलाया गया है। जो प्रत्येक सप्तमी को 1 बार रात्रि में भोजन करता है और वर्ष समाप्त होने पर दूध देने वाली गाय का दान करता है, उसे सूर्यलोक की प्राप्ति होती है। यह भानुव्रत कहलाया गया है। जो प्रत्येक चतुर्थी को 1 बार रात्रि में भोजन करता है और वर्ष के अंत में सोने का हाथी दान करता है, उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। यह वैनायक व्रत कहलाया गया है। जो चौमासे भर बड़े बड़े फलों का परित्याग करके कार्तिक में सोने का फल दान करता है तथा हवन कराकर उसके अंत में ब्राह्मण को गाय और बैल देता है, उसे सूर्यलोक की प्राप्ति होती है और यह व्रत सौर व्रत कहलाया गया है। जो 12 द्वादशियों को उपवास करके अपनी शक्ति के अनुसार गौ वस्त्र और तथा सुवर्ण ब्राह्मणों का दान करके ब्राह्मणों की पूजा करता है, वह परम पद की प्राप्ति करता है। यह विष्णु व्रत है। जो प्रत्येक चतुर्दशी को 1 बार रात्रि में भोजन करता है और वर्ष की समाप्ति होने पर 1 गाय और 1 बैल का दान करता है, उसे रुद्रलोक की प्राप्ति होती है। इसे त्रैंबक व्रत कहलाया गया है। जो 7 रात उपवास करके ब्राह्मण को घी से भरा हुआ घड़ा दान करता है, वह ब्रह्मलोक को प्राप्ति करता है। इसका नाम वर व्रत कहलाया गया है। जो काशी जाकर दूध देने वाली गौ का दान करता है, वह 1 कल्प तक इंद्रलोक में निवास करता है। यह मित्र व्रत कहलाया गया है। जो 1 वर्ष तक तांबुल का सेवन छोड़कर अंत में एक गोदान करता है, वह वरुण लोक को जाता है। इसका नाम वारुण व्रत है। जो चंद्रायण व्रत करके सोने का चंद्रमा बनवाकर दान करता है, उसे चंद्रलोक की प्राप्ति होती है। यह चंद्रव्रत कहलाता है। जो ज्येष्ठ मास में पंचाग्नि का तप करके अंत में अष्टमी या चतुर्दशी को सोने की गाय का दान करता है, वो स्वर्ग को जाता है। यह रुद्रव्रत कहलाया गया है। जो प्रत्येक तृतीया को शिव मंदिर में जाकर 1 बार हाथ जोड़ता है और वर्ष पूर्ण होने पर दूध देने वाली गाय का दान करता है, उसे देवी लोक की प्राप्ति होती है। इसका नाम भवानी व्रत है। जो माघ भर गीला वस्त्र पहनता है और सप्तमी को गोदान करता है, वह कल्प पर्यंत स्वर्ग में निवास करके अंत में इस पृथ्वी का राजा होता है। इसे तापक व्रत कहते हैं, जो 3 रात उपवास करके फाल्गुन की पूर्णिमा को घर का दान करता है, उसे आदित्य लोक की प्राप्ति होती है। यह धाम व्रत है। जो व्रत रहकर 3 संध्याओं में, प्रातः मध्यान्ह एवं सायंकाल में भूषणों द्वारा ब्राह्मण दंपति को की पूजा करता है, उसे मोक्ष मिलता है। यह मोक्ष व्रत है। जो शुक्ल पक्ष की द्वितीया को ब्राह्मणों के नमक से भरा हुआ पात्र, वस्त्र से ढका हुआ कांसे का बर्तन तथा दक्षिणा देता है, वह व्रत समाप्त होने पर गौ का भी दान करता है। यह भगवान शिव के लोक में जाता है तथा 1 कल्प के बाद राजाओं के भी राजा होते हैं। इसका नाम सोमव्रत है। जो हर प्रतिपदा को एक ही अन्न का भोजन करके वर्ष के समाप्त होने पर कमल का दान करता है, वह वैश्वानर लोक में जाता है। इसे अग्निव्रत कहते हैं। जो प्रत्येक दशमी को एक ही अन्न का भोजन कर वर्ष के समाप्त होने पर 10 गौएं और सोने का दीप दान करता है, वह ब्रह्मांड का स्वामी होता है। इसका नाम विश्वव्रत है। यह बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला होता है। जो स्वयं कन्यादान करता है, जो दूसरों की कन्या का विवाह करता है, करा देता है, वह अपनी 21 पीढ़ियों तक ब्रह्मलोक में जाता है। कन्यादान से बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं है, विशेषतः पुष्कर में। और वहाँ भी कार्तिक पूर्णिमा में जो कन्या का दान करता है, उसका स्वर्ग में निवास होता है, अक्षयवास होता है। जो मनुष्य जल में खड़े होकर तिल की पीठी बने हुए हाथियों को रत्नों से विभूषित करके ब्राह्मणों को दान देता है, उसे इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। जो भक्तिपूर्वक इन उत्तम व्रतों का वर्णन पढ़ता है और सुनता है, वो मन्वंतरों तक गंधर्वों का स्वामी रहता है। स्नान के बिना न तो शरीर ही निर्मल है, न मन की शुद्धि होती है। अतः मन की शुद्धि के लिए सबसे पहले स्नान का विधान है। घर में रखे हुए अथवा तुरंत के निकाले हुए जल से स्नान करना चाहिए। किसी जलाशय या नदी में स्नान करना सुलभ हो तो वह भी उत्तम है। मंत्रवेत्ता विद्वान पुरुष को मूल मंत्र के द्वारा तीर्थ की कल्पना कर लेनी चाहिए। ओम नमः नारायणाय, यह मूल मंत्र बताया गया है। पहले हाथ में कुश लेकर विधिपूर्वक आचमन करें तथा मन और इंद्रियों का संयम रखते हुए बाहर और भीतर से पवित्र रहें। फिर 4 हाथ का चौकर मंडल बनाकर उसे नामांकित वाक्यों द्वारा भगवती गंगा में गंगा का आह्वान करें। हे गंगे, तुम भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुई हो। श्री विष्णु ही तुम्हारे देवता है, इसलिए तुम्हें वैष्णवी भी कहते हैं। हे देवी, तुम जन्म से लेकर मृत्यु तक समस्त पापों से मेरी रक्षा करो। स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में कुल 3.5 करोड़ तीर्थ हैं। यह वायु देवता का कथन है। हे माता जानवी, ये सभी तीर्थ तुम्हारे भीतर मौजूद है। देवलोक में तुम्हारा नाम नंदिनी और नलिनी है। इनके सिवा दक्षा, पृथ्वी, सुभगा, विश्वकाया, शिवा, अमृता, विद्याधरी, महादेवी, लोकप्रसादिनी, क्षेमा, जाह्नवी, शांता और शांति प्रदायिनी आदि भी तुम्हारे नाम हैं। जहाँ स्नान करते समय पवित्रों का नाम का कीर्तन होता है, वहाँ त्रिपद गामिनी भगवती गंगा उपस्थित हो जाती है। 7 बार उपर्युक्त नामों का जप करके संपुट के आकार में दोनों हाथों को जोड़कर उसमें जल लीजिए। 3, 4, 5 या 7 बार वह मस्तक पर डालें। फिर विधिपूर्वक मृत्तिका को अभिमंत्रित करके अपने अंगों में लगाएं। अभिमंत्रित करने का मंत्र इस प्रकार है। अश्वकांते रथक्रांते विष्णुक्रांते वसुंदरे मृत्तिके हर मे पापम यन्म्या यन्मया दुष्कृतम कृतम। उद्वत्तासि विरोहर कृष्णेन सतबाहुना नमस्ते सर्वलोकानां प्रभव वारिणी सुव्रते। हे वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला रहे हैं। भगवान विष्णु ने भी वामन रूप लेकर तुम्हें एक पैर से नापा था। हे मृत्तिके, मैंने जो बुरे कर्म किए हैं मेरे उन सब पापों को तुम हर लो। हे देवी, भगवान विष्णु ने सैकड़ों भुजाओं वाले रवारा का रूप धारण करके तुम्हें जल के बाहर निकाला था। तुम संपूर्ण लोकों की उत्पत्ति के लिए अरण्य के समान हो। हे सुव्रते, तुम्हें मेरा नमस्कार है। इस प्रकार मृतिका लगाकर पुनः स्नान करें, फिर विधिवत आचमन करके उठे और शुद्ध सफेद श्वेत धोती एवं चद्दर धारण करके त्रिलोकी को तृप्त करने के लिए तर्पण करें। सबसे पहले ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और प्रजापति का तर्पण करें। तत्पश्चात देवता, यक्ष, नाग, गंधर्व, श्रेष्ठ अप्सराएं, क्रूर सर्प, गरुड़ पक्षी, वृक्ष, जंबक आदि असुर, विद्याधर, मेघ, आकाशचारी जीव, निराधार जीव, पापी जीव तथा धर्मपरायण जीव को तृप्त करने के लिए मैं जल देता हूँ, यह कहकर उन सबको जलांजलि दे। देवताओं को तर्पण करते समय यज्ञोपवीत को बाएं कंधे पर डालें, तत्पश्चात उसे गले में माला की भांति कर ले और मनुष्यों, ऋषियों तथा ऋषि पुत्रों को भक्तिपूर्वक तर्पण करें। सनक, सनंदन, सनातन, कपिल, आसुरी, वोडू और पंचशिख, ये सभी मेरे दिए हुए जल से सदा तृप्त रहें, ऐसी भावना करके जल दें। इसी प्रकार मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु, प्रचेता, वशिष्ठ, भृगु, नारद तथा संपूर्ण देवार्षि एवं ब्रह्मर्षियों के को अक्षत सहित जल के द्वारा तर्पण करें। इसके बाद यज्ञोपवीत को दाएं कंधे पर करके बाएं घुटनों से पृथ्वी पर टेक कर बैठें। फिर अग्निश्वात, सौम्य, हविष्मान, उष्मप, सुकाली, बहिष्यत तथा आजप्य नाम के पितरों को तिल और चंदन से युक्त जल भक्तिपूर्वक तर्पण करें। इस प्रकार हाथों में कुश लेकर पवित्र भाव से परलोकवासी पिता, पितामह आदि और माता, मातामह आदि का नाम गोत्र का उच्चारण करते हुए उनको तर्पण करें। इस क्रम से विधि और भक्ति के साथ सबका तर्पण करें और नाम निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करें। ये बांध्वा बांध्वा ये बांध्व बांध्वा बांध्वाए ये न जन्म नहीं बांधवा ते तृप्ति मखिलायांतु ये प्यस्मोतो य कांक्ष। जो लोग मेरे बांधव न हो, जो मेरे बांधव हो तथा जो दूसरे किसी जन्म में भी मेरे बांधव हो, वे सब मेरे दिए हुए जल से तृप्त हो। उनके सिवा और जो कोई भी प्राणी मुझसे जल की अभिलाषा रखता है उसकी भी तृप्ति हो और उससे भी लाभ हो, ऐसा कहकर उनके उद्देश्य में जल गिराएं। तत्पश्चात विधिपूर्वक आचमन करके अपने आगे पुष्प तथा अक्षतों से कमल की आकृति बनाएं। फिर यत्नपूर्वक सूर्यदेव का नाम का उच्चारण करते हुए अक्षत, पुष्प और रक्त चंदन मिश्रित जल से अर्घ्य दें। अर्घ्यदान का मंत्र इस प्रकार है। नमस्ते विश्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मरूपिणे सहस्रस्य सम्यक् नित्यं नमस्ते सर्वतेजसे नमस्ते रुद्रवपुषे नमस्ते भक्तवत्सले पद्मनाभ नमस्ते सु कुण्डलाङ्गदभूषित्य नमस्ते सर्वलोकेषु सुप्तां स्थानप्रतिबुद्धये सुकृतं दुष्कृतं चैव सर्वपश्यसि सर्वदा सत्यदेव नमस्तेसु प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तेस्तु प्रभाकर नमोस्तु ते। हे भगवान सूर्य, आप विश्वरूप और ब्रह्म स्वरूप हैं। इन दोनों रूपों में आपको नमस्कार है। आप सहस्त्रों किरणों से सुशोभित होकर सबसे तेज रूप हैं। आपको सदा नमस्कार है। हे भक्तवत्सल, रुद्र रूपधारी आप परमेश्वर को बारंबार नमस्कार है। कुंडल और अंगद आदि विभूषणों से विभूषित हे पद्मनाभ, आपको नमस्कार है। हे भगवान, आप संपूर्ण लोकों के लिए सोए हुए जीव को जगाते हैं। आपको मेरा प्रणाम है। आप सदा सबके पाप पुण्य का देखते हैं। हे सत्यदेव, आपको नमस्कार है। हे भास्कर, मुझ पर प्रसन्न होइए। हे दिवाकर, आपको नमस्कार है। हे प्रभाकर, आपको नमस्कार है। इस प्रकार सूर्यदेव को नमस्कार करके 3 बार उसकी प्रदक्षिणा कीजिए। फिर द्विज, गौ और स्वर्ण का स्पर्श करके अपने घर में जाएं और वहां भगवान की पावन प्रतिमा का पूजन करें। तदंतर भगवान को भोग लगाकर बलि वैश्वदेव करने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन करा के बाद में स्वयं भोजन करें। इस विधि से नित्य कर्म करने से समस्त ऋषियों को सिद्धि प्राप्त होती है। पुलत्स्य जी कहते हैं, हे राजन, पूर्वकाल की बात है। बृहत नाम के कल्प में धर्ममूर्ति नाम के एक राजा थे जिनकी इंद्र से बड़ी मित्रता थी। उन्होंने सहस्त्र दैत्यों का वध किया था। सूर्य और चंद्रमा भी उनके तेज के समान प्रभाहीन जान पड़ते थे। उन्होंने सैकड़ों शत्रुओं को परास्त किया था। वे इच्छानुसार रूप धारण कर सकते थे। मनुष्यों से उनकी भी कभी पराजय नहीं हुई थी। उनकी पत्नी का नाम था भानुमती। वह त्रिभुवन में सबसे सुंदर थी। उसने लक्ष्मी की भांति अपने रूप से दैव सुंदरियों को भी मात कर दिया था। भानुमती की राजा की पटरानी थी। वे उसे प्राण से भी बढ़कर मानते थे। एक समय वह राजसभा में बैठे हुए महाराज धर्ममूर्ति ने विस्मय विमुग्ध होकर अपने पुरोहित मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ को प्रणाम किया और यह प्रश्न पूछा, हे भगवान, किस धर्म के प्रभाव से मुझे सर्वोत्तम लक्ष्मी की प्राप्ति हुई है? मेरे शरीर में जो सदा उत्तम है और जिसका विपुल तेज भरा रहता है, उसका क्या कारण है? वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, प्राचीन काल में एक लीलावती नाम की वेश्या थी जो सदा भगवान शंकर के जप भजन में तत्पर रहती थी। एक बार उसने पुष्कर में चतुर्दशी नमक को नमक का पहाड़ बनाकर सोने की बनी हुई देव की प्रतिमा का विधिपूर्वक दान किया। शुद्ध नाम का एक सुनार था जो लीलावती के घर में नौकर का काम करता था। उसने बड़ी श्रद्धा के साथ मुख्य मुख्य देवताओं की स्वर्णमयी प्रतिमाएं बनाई थी जो देखने में अत्यंत सुंदर तथा शोभा संपन्न थी। धर्म का काम समझकर उसने उन प्रतिमाओं की बनाने की मजदूरी नहीं ली थी। उस नमक के पर्वत पर जो सोने का वृक्ष बना लगाए गए थे, उन्हें वह सुनार की स्त्री ने तपाकर दैदीप्यमान बना दिया था। सुनार की पत्नी भी लीलावती के घर परिचारिका का काम करती थी। उन्हीं दिनों में उन्हीं दोनों ने ब्राह्मणों की सेवा से लेकर सारा कार्य संपन्न किया था। तदंतर दीर्घकाल तक के पश्चात लीलावती वेश्या सब पापों से मुक्त होकर शिवजी के धाम को चली गई तथा वह सुनार, जो दरिद्र होने पर भी अत्यंत सात्विक था और जिसने वैश्या से मजदूरी नहीं ली थी, उसी पुण्य के प्रभाव से आप सातों द्वीपों के स्वामी तथा हजारों सूर्यों के समान तेजस्वी हुए। सुनार की भांति उसकी पत्नी ने भी सोने के वृक्षों और देव मूर्तियों को कांतिमान बनाया था, इसलिए वही आपकी महारानी भानुमति हुई। प्रतिमाओं को जगमग बनाने के कारण महारानी का रूप भी अत्यंत सुंदर हुआ और उसी पुण्य के प्रभाव से आप मनुष्य लोक में अपराजित हुए हैं और आपको आरोग्य और सौभाग्य युक्त राजलक्ष्मी प्राप्त हुई है, इसलिए आप भी विधिपूर्वक धान्य पर्वत आदि 10 प्रकार के पर्वत बनाकर उसका दान दीजिए। पुलत्स्य जी कहते हैं, राजा धर्ममूर्ति ने बड़ा बहुत अच्छा कहकर वशिष्ठ जी के वचनों का आदर किया और अनाज आदि के पर्वत बनाकर उन सब का विधिपूर्वक दान किया। तत्पश्चात वे देवताओं से पूजित होकर महादेव जी के परम धाम को चले गए। जो मनुष्य इस प्रसंग का भक्तिपूर्वक वर्णन करता है वह भी पाप रहित होकर स्वर्ग लोक में जाता है। हे राजन, अन्नादि पर्वतों के दान का पाठ मात्र करने से दुस्वप्नों का नाश होता है। फिर जो इस पुष्कर क्षेत्र में शांत चित्त होकर सब प्रकार के पर्वतों को स्वयं दान करता है, उसको मिलने वाले फल का वर्णन क्या हो सकता है।